तो केवल व्यतिरेकी हेतु को हमने पूर्व पाठ में पढ़ा था, आज केवलान्वयी से शुरू हो रहा है। कश्चित अन्यो हेतु केवलान्वयी, कुछ जो अन्य हेतु होते हैं वह केवलान्वयी हेतु होते हैं। यथा शब्द अविधेय प्रमेयत्वात्, इसमें जो है ना शब्द यह पक्ष है, अभिधेय यह साध्य है, अप्रमेयत्व जो है वह हेतु है। इसमें कुछ एक नया दो नए शब्द आ गए हैं, एक अविधेय और एक प्रमेय, इसको समझिए। मैंने आपको अविधा लक्षणा व्यंजना के बारे में बताया होगा कि शब्द और अर्थ के बीच में तीन तरह का संबंध होता है, अविधा नाम का संबंध, लक्षणा नाम का संबंध और व्यंजना नाम का संबंध। ठीक है, तो अविधा संबंध के द्वारा जिसको बताया, अविधा संबंध के द्वारा जिसको बताया जाए उसको हम अविधेय कहते हैं। ठीक है, और प्रमेय शब्द है, प्रमेय का मतलब हुआ जो प्रमाण के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाए उसको हम कहते हैं प्रमेय, माने प्रमाणयितुम योग्यम प्रमेयम, प्रमाणित करने के जो योग्य होता है उसको हम कहते हैं प्रमेय। ठीक है, अविधेय और प्रमेय, अविधेय माने अविधा संबंध के द्वारा जिसको कहा जाए वह हो गया अविधेय, और प्रमेय माने जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाए वह हो गया प्रमेय। तो चलिए यहाँ पर जो अनुमान वाक्य है, शब्द अविधेय प्रमेयत्वात्, माने शब्द जो है, माने जितने प्रकार के शब्द हैं वो सब अविधेय होते हैं, माने अविधा संबंध के द्वारा कहे जाते हैं। क्यों, हेतु उसमें दिया प्रमेयत्वात्, माने उसमें प्रमेयत्व रहता है, किसमें, शब्द में जो है वह प्रमेयत्व रहता है, इसलिए शब्द जो है वह अभिधेय है। यत प्रमेयम तत अभिधेयम, जो जो प्रमेय होता है तत तत अभिधेयम, वह अभिधेय होता ही होता है। यथा घटः, जैसे घरा, घटः जैसे घट जो है वह चूंकि प्रमेय है तो वह घट जो है अभिधेय भी होता ही है। तथा चायम, इसी तरह से घट की तरह शब्द भी अभिधेय होता है। तस्मात तथा, तथा चाय माने शब्द, घट की तरह शब्द भी जो है वह प्रमेय है, इसीलिए तस्मात तथा, इसलिए शब्द अभिधेय है, ऐसा है ना। तथा चायम में जो है ना वह हेतु को पकड़ना है, अतस्मात तथा में साध्य को पकड़ना है, तो इसमें हेतु क्या है, प्रमेयत्व हेतु है ना, तो तथा चायम माने शब्द भी जो है वह प्रमेयत्व से युक्त है, अथवा शब्द भी जो है वह प्रमेय है, ये हो गया तथा चायम। अतस्मात तथा माने इसलिए शब्द जो है वह अभिधेय है, तो तथा चायम में हेतु को लेना है, अतस्मात तथा में साध्य को लेना है। अत्र शब्दस्य अविधेयत्वं साध्यम्, यहाँ जो है शब्द पक्ष है और उसका अविधेयत्व जो है वह साध्य है। प्रमेयत्वं हेतु, प्रमेयत्व हेतु है, सच केवलान्वयी है वह, और वह हेतु केवलान्वयी हेतु है। अब उसको सिद्ध करेंगे कि कैसे केवलान्वयी हेतु है, ताकि यत अविधेयम न भवति, जो अविधेय नहीं होता है, तत प्रमेयम अपि न भवति, वह प्रमेय भी नहीं होता है। यथा अमुकः, जैसे कि कोई, जैसे कि कोई, इस तरह से इति व्यतिरेक दृष्टांत अभाव, इस तरह से व्यतिरेक दृष्टांत का अभाव है। ठीक है, तो व्यतिरेकी हेतु में क्या होता था, अन्वय दृष्टांत का अभाव होता था, और अन्वय और केवलान्वयी में किसका अभाव है, व्यतिरेक दृष्टांत का अभाव है, इसीलिए इसको केवलान्वयी हेतु कहते हैं। सर्वत्र ही प्रामाणिक एवं अर्थो दृष्टांत, माने जितने भी दृष्टांत होते हैं सब प्रामाणिक ही होते हैं, माने प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध किए जाते हैं, माने वह प्रमेय ही होते हैं, तो वह जितने प्रमेय हैं वह सब अविधेय होते हैं। तो ये सब तो जो है ना पक्ष और साध्य में आ गया, तो दृष्टांत जो है ना इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, वही कहते हैं सर्वत्र ही प्रामाणिक एवं अर्थो दृष्टांत, हर जगह जो है प्रामाणिक जो अर्थ है माने वस्तु है वही दृष्टांत बनता है। स्वच प्रमेयश्च अविधेयश्च, और वह जो होगा अर्थ वस्तु वह प्रमेय और अभिधेय तो होगा ही होगा, तो ये सारा का सारा जो है साध्य में और हेतु में आ गया, अब दृष्टांत के लिए कुछ यहाँ पर बचा ही नहीं, इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत के अभाव होने के कारण यह केवलान्वयी हेतु कहलाता है। आगे कहते हैं एतेषां च अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी हेतूनां त्रयाणां, मान इस तरह से तीन जो हेतु बताए गए, अन्वय व्यतिरेकी हेतु, केवलान्वयी हेतु, केवल व्यतिरेकी हेतु, इन तीनों में इसी त्रयाणाम मध्य, इन तीनों के मध्य में यो हेतु अन्वय व्यतिरेकी, जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है, सह पंच रूप उत्पन्न एव स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते। वह जब पंच रूप से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है माने सिद्ध होता है, पंच रूप क्या है, वही पंचावयव वाक्य। तो पंचावयव वाक्य क्या है, तो वही प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये जो पंच रूप है, इन पंच रूप से जब उत्पन्न होगा, सिद्ध होगा कौन, अन्वय व्यतिरेकी हेतु, तभी जो है वह स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते, तभी वह अपने साध्य को साधयितुं क्षमते माने सिद्ध करने के लिए योग्य होता है, क्षमते माने योग्यो भवति। न तो एकेनापि रूपेण हीनः, अगर उस पंचावयव में से, पंच रूप में से एक से भी हीन होगा, माने एक भी उसमें अवयव नहीं होगा, तो वह अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। तानि पंच रूपानि, अच्छा थोड़ा सा जो है ना, अब यहाँ पर जो मैंने पंच रूप की व्याख्या की, वो पांच अवयव वाली व्याख्या की ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, तो यहाँ जो पंच रूपोपपन्न में जो पंच रूप शब्द आया है, इस ये भ्रम नहीं पालना है, वो पांचों चीजें यहाँ नहीं है, यहाँ पर पांच अलग रूप है। वो पांच रूप क्या है, तो ये स्वयं आगे बता रहे हैं कि तानि पंच रूपाणी, वो जो पांच रूप हैं वो क्या क्या हैं, तो पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति ही, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम च। ऐसा है कि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि पंच रूपोपपन्न एव स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते, इसमें पंच रूप कौन कौन है, तो बहुत लोग भ्रम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भ्रम वाली बात ही बताई थी कि पंच रूपोपन्न में पंच रूप का मतलब होता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, यही बच्चे लिख देते हैं, फिर नंबर नहीं मिल पाता। तो आपको सावधान होना रहना है, यहाँ जो पंच रूपोपन्न में पंच रूप है उसको ना पंचावयव कहते हैं, पंचावयव, और इसको कहते हैं पंच रूप, ये अंतर है दोनों में। इस पंच रूप में कौन कौन आते हैं, एक पहला है पक्ष सत्व, दूसरा है सपक्ष सत्व, तीसरा है विपक्ष व्यावृत्ति, चौथा है अबाधित विषयत्व, और पांचवा है असत प्रतिपक्षत्व। अब ये पांचों जो है ना, नए नए शब्द आए हैं, तो घबराना नहीं है, इन पांचों के बारे में ये स्वयं आगे बताएंगे कि ये पक्ष सत्व क्या होता है, सपक्ष सत्व क्या होता है, ये सब आगे बताएंगे, इसलिए मैं भी अभी इसकी चर्चा नहीं करता हूँ। एतान तो पंच रूपाणि धूमवत्वादो अन्वय व्यतिरेकिनी हेतु विद्यन्ते, कहा कि ये जो पांचों के पांच रूप हैं, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व, ये जो पांचों रूप हैं, ये धूमवत्व हेतु में विद्यमान है, इसीलिए यह अन्वय व्यतिरेकी हेतु के रूप में ये अपने साध्य को सिद्ध कर सकते हैं। तथा ही धूमवत्वम पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः पर्वतेतस्य विद्यमानत्वात्। अब देखिए, अब जो मैंने कहा था ना कि एक एक करके ये खुद बताएंगे, तो पहला जो रूप था वो क्या था, पंच रूप में से पक्ष सत्व। पक्ष सत्व का मतलब होता है पक्षे सत्वम, माने पक्ष में रहना, सत्व माने रहना, अब पक्ष, पक्ष सत्वम जो है ना समास हुआ है यहाँ पर, सप्तमी तत्पुरुष समास, पक्षे सत्वम, पक्ष सत्वम माने पक्ष में रहना, पक्ष में विद्यमान रहना, किसको रहना, हेतु को रहना, तो हेतु अगर पक्ष में रहता है तो वहाँ पर पक्ष सत्व माना जाता है, ठीक है। अब उदाहरण यहाँ दिखाया पक्ष सत्व का, तथा धूमवत्वम, धूमवत्व जो हेतु है, और पक्षस्य पर्वतस्य, पक्ष जो है वह पर्वत है, उस पर्वत का धर्म, हाँ पर्वत का धर्म है धूमवत्व, तो ये पक्ष सत्व हो गया, पक्षे सत्वम, पक्षे माने पर्वते, सत्वम कस्य सत्वम, धूमवत्वस्य सत्वम, तो पर्वत में धूमवत्व का सत्व है, माने धूमवत्व विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर पक्ष सत्व माना जाएगा। तथा ही धूमवत्वम पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः, धूमवत्व जो हेतु है वह पक्ष पर्वत का धर्म है, क्यों, तो पर्वते तस्य विद्यमानत्वात्, क्योंकि वह पर्वत में विद्यमान है, जो जिसमें रहता है वह धर्म कहलाता है ना, जैसे मनुष्य में कौन सा धर्म रहता है, मनुष्यत्व धर्म रहता है, तो मनुष्य में रहता है इसलिए वह मनुष्य का धर्म है, ऐसे पर्वत में धूमवत्व रहता है तो वह पर्वत का धर्म हुआ। तो ये पक्ष सत्व का उदाहरण इन्होंने बताया, पक्ष सत्व का मतलब पक्षे सत्वम, पक्ष है पर्वत, और हेतु है धूमवत्व, तो पर्वत में धूमवत्व का सत्व है माने विद्यमानत्व है, इसलिए यहाँ पर पक्ष सत्व सिद्ध होता है। अब इसमें धूमवत्व जो रूप हेतु है ना, उसमें ये पांचों रूपों को ये बताएंगे कि ये पक्ष सत्व भी है, सपक्ष सत्व भी है, विपक्ष व्यावृत्ति भी है, इस तरह से पांचों को बताएंगे। तो पहला बताया इन्होंने, दूसरा आप देखिए सपक्ष सत्व को सिद्ध कर रहे हैं। सपक्ष सत्व का मतलब भी उसी तरह जैसे पक्षे सत्वम पक्ष सत्वम, उसी तरह से सपक्षे सत्वम सपक्ष सत्वम, जो सपक्ष में रहे उसको सपक्ष सत्व कहते हैं। मन में आएगा कि गुरुजी ये पक्ष और सपक्ष क्या होता है, तो ऐसा है जहाँ पर संदेह हो कि ये है कि नहीं है उस वहाँ उसको हम पक्ष मानते हैं, और जहाँ पर संदेह न हो, निर्णय हो, फिक्स हो पहले से कि नहीं ये तो है ही है या ये नहीं ही है, उसको हम सपक्ष कहते हैं। तो संदिग्ध जो हो ना वह पक्ष है, और निर्णीत जो है वह सपक्ष है। अब जैसे देखिए पर्वत जो है वह संदिग्ध है, वह जो है ना प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं है ना कि इसमें बहनी है कि नहीं है, तो इसलिए पर्वत हो गया पक्ष। लेकिन महानस जो है उसमें सिद्ध है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष के द्वारा अग्नि और धूम जो है वहाँ पर सिद्ध है, इसलिए महानस होगा सपक्ष और पर्वत हो गया पक्ष। यही अंतर है पक्ष में और सपक्ष में। तो सपक्ष सत्वम माने सपक्ष में रहना, वही कह रहे हैं कि एवं सपक्ष सत्वम, यहाँ पर धूमवत्व रूप हेतु में सपक्ष सत्व भी है। कैसे? तो सपक्षे महानसे, सपक्ष जो महानस है अर्थात निर्णीत जो पक्ष है, यहाँ पर महानस जो है निर्णीत पक्ष हो गया, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, ये प्रत्यक्ष से ही निर्णय हो जाता है कि हाँ जी यहाँ पर धूम बनी है। तो सपक्ष जो महानस है तद विद्यते, उसमें जो है धूमवत्व जो है विद्यते माने रहता ही है। एवं अब तीसरा जो है ना वो सिद्ध कर रहे हैं, तीसरा क्या है? विपक्ष व्यावृत्ति। विपक्ष व्यावृत्ति में भी समास है, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है, विपक्षात व्यावृत्ति माने विपक्ष से जहाँ व्यावृत्ति हो। विपक्ष क्या हुआ? अब जैसे पक्ष हो गया अति पर्वत, और विपक्ष क्या होगा? उसका महाह्रद होगा, क्योंकि महाह्रद में न धुआं है न अग्नि है, और पर्वत पर दोनों है, धुआं भी है अग्नि भी है। तो पक्ष अगर पर्वत हुआ तो उसका विपक्ष क्या होगा? महाह्रद होगा। तो विपक्षात व्यावृत्ति ही, जो हेतु विपक्ष में न रहता हो, यह हो गया विपक्ष व्यावृत्ति का मतलब, माने जो हेतु विपक्ष में नहीं रहता हो। तो यह जो धूमवत्व हेतु है वह विपक्ष में नहीं रहता है, वही कह रहे हैं एवं विपक्षात महाह्रदात व्यावृत्ति ही तत्र नास्ति, माने विपक्ष जो महाह्रद है उससे व्यावृत्ति यहाँ पर नहीं है, अर्थात वह विपक्ष में धूमवत्व रूप हेतु नहीं रहता है। इस तरह से तीसरा जो रूप है विपक्ष व्यावृत्ति वाला रूप वह भी रह गया। अब चौथा बताते हैं एवं अबाधित विषयत्वं च धूमवत्वम। अब चौथा रूप क्या था? अबाधित विषयत्व माने जिसका विषय बाधित न हो, जिसका विषय निषिद्ध न हो, प्रतिबंधित न हो, ऐसा होना चाहिए, तो होगा अबाधित विषयत्व। तो कहा कि अब एवं अबाधित विषयत्वं च धूमवत्वम, धूमवत्व जो है उसमें अबाधित विषयत्व भी रहता है। कैसे? तो तथा ही धूमवत्वस्य हेतोः विषयः साध्यो धर्मः। कहा कि धूमवत्व जो हेतु है उसका विषय क्या है? साध्य धर्म। क्या क्या विषय का? देखो ऐसा अबाधित विषयम में जो विषय शब्द है, एक विषय मैंने सिखाया है कि जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञान का विषय कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो विषय है वह हेतु के संबंध में है ना, तो विषय से लेंगे हेतु का विषय, और हेतु का विषय क्या होगा? साध्य का जो धर्म होगा वही यहाँ पर हेतु का विषय होगा, और वह जो साध्य का धर्म है, हेतु का विषय है, वह अबाधित होना चाहिए। ये अबाधित विषयत्व का तात्पर्य है। तो वो बता रहे हैं कि धूमवत्व से हेतु हो, धूमवत्व जो हेतु है उसका तस्य विषय, उसका जो विषय है क्या? साध्यो धर्म। उसका विषय जो है साध्य धर्म। कौन? अग्निमत्वम, जो साध्य धर्म है तत्केनापि प्रमाणेन न बाधितम। वह अग्निमत्व जो है किसी भी प्रमाण से माने न प्रत्यक्ष से, न अनुमान से, न उपमान से, न शब्द से, किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है। बाधितम का क्या अर्थ होगा? तो न खंडितम। बाधितम माने खंडितम, और न बाधितम माने न खंडितम, माने अग्निमत्व रूप जो साध्य धर्म है अर्थात धूमवत्व हेतु का विषय है वह किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है, अर्थात किसी भी प्रमाण से खंडित नहीं है। इस तरह से अबाधित विषयत्व भी धूमवत्व रूप हेतु में विद्यमान है। फिर से एक बार गौर करिए, अबाधित विषयत्व, बाधित माने खंडित, अबाधित माने अखंडित, और विषय का मतलब हेतु का विषय, वह हेतु का विषय कौन होगा, साध्य धर्म होगा। तो अगर हम हेतु लेंगे धूमवत्व को तो विषय हो जाएगा वहाँ पर अग्निमत्व। इस तरह से अबाधित विषयत्व भी यहाँ पर है धूमवत्व रूप हेतु में। और पांचवा रूप बताया क्या, पांचवा रूप है असत प्रतिपक्षत्व। ये असत प्रतिपक्षत्व क्या है, प्रतिपक्ष कहते हैं विरोधी हेतु अगर हो तो वह हो गया प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष, विरोधी पक्ष, विरोधी हेतु का होना ये हो गया सत प्रतिपक्ष, और विरोधी हेतु का न होना ये हो गया असत प्रतिपक्ष। फिर से सुन लीजिए, माने विरोधी हेतु का होना, विरोधी हेतु हो गया प्रतिपक्ष, विरोधी हेतु का होना हो गया सत प्रतिपक्ष, और विरोधी हेतु का न होना ये हो गया असत प्रतिपक्ष। तो इसमें असत प्रतिपक्षत्व भी है धूमवत्व रूप हेतु। आगे बताते हैं, असन प्रतिपक्षो यस्य इति असत प्रतिपक्षम। ये इन्होंने विग्रह करके बताया अर्थ कि असत प्रतिपक्ष का क्या अर्थ होता है। तो असन प्रतिपक्षो यस्य, मान जिसका प्रतिपक्ष असत है माने नहीं है, उसको कहते हैं असत प्रतिपक्ष। धूमवत्वम हेतु, इसी तरह से धूमवत्व हेतु जो है वह भी असत प्रतिपक्ष वाला है। कैसे, तो तथा ही साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम प्रतिपक्ष इत्युच्यते। मैंने जो प्रतिपक्ष का मतलब बताया था वो समझने के लिए, अब शास्त्रीय रीति से जो है ना प्रतिपक्ष किसे कहते हैं, ये दो नंबर में भी पूछ सकता है, तो उसको बता रहे हैं कि साध्य विपरीत साधकम, साध्य से विपरीत का जो साधक हेतु है अगर वह रहता है तो वह प्रतिपक्ष कहलाता है। साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम प्रतिपक्ष, साध्य जैसे है बहनी, उसका विपरीत क्या होगा, बहनी अभाव माने साध्याभाव। उसका जो साधक हेतु अगर हेतुअंतर माने अन्य हेतु, तो साध्याभाव का साधक अगर अन्य कोई हेतु है तो वह हेतु जो है प्रतिपक्ष कहलाता है। साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम प्रतिपक्ष इत्युच्यते। साध्य के विपरीत साधक अर्थात साधन करने वाला, सिद्ध करने वाला हेत्वंतरम माने अन्य जो हेतु है वह प्रतिपक्ष कहलाता है। स्वच धूमवत्व हेतु नास्ति एव, वह जो है धूमवत्व हेतु रूप में, धूमवत्व रूप हेतु में नास्ति एव, वह जो है प्रतिपक्ष नहीं है। क्यों, तो अनुपलम्भात, क्योंकि इस तरह का जो है ना कोई मिलता हेतु नहीं है। तदेवं पंच रूपाणि धूमवत्व हेतु विद्यन्ते, इस तरह से पांचों रूप जो है, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व, ये जो पांच रूप हैं ये धूमवत्व हेतु विद्यन्ते, धूमवत्व रूप हेतु में विद्यमान है। तेन एतद् धूमवत्वम अग्निमत्वस्य गमकम साधकम, इसलिए यह जो धूमवत्व हेतु है वह अग्निमत्व का गमक होता है। गमक होता माने साधक होता है। तो ये जो पीछे बताया गया था ना शुरू में कि अन्वय व्यतिरेकी जो हेतु है वह जब पंच रूप से उपपन्न होता है, पंच रूप से सिद्ध होता है, तभी वह साध्य को सिद्ध कर पाता है। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि यह जो धूमवत्व रूप हेतु है यह पंच रूप उपपन्न है, इसीलिए धूमवत्व अग्निमत्व का साधक हो जाएगा। आज का पाठ यहीं पर।